समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात, अभिनंदन आप सभी का। आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह के साथ ही आज सवेरे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए सायरा मुश्तबा और चंद्रिका जोशी का नमस्कार।
नमस्कार राधा, हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। और मेरी खुश नसीबी है दैट आई एम डूइंग द शो विद चंद्रिका आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, जो कि मुझे आपका नाम लेते हुए भी वो लगता है, लेकिन क्या करें, शो का दस्तूर है। मेरी बहुत अजीज सीनियर है एंड वी वेलकम ऑल आवर लिसनर्स टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ आज सवेरे। और आज तो कुछ खास होने ही वाला है क्योंकि आप हैं तो बहुत ही बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां हैं हमारे लास्ट सेक्शन में जिनको याद करेंगे।
सुख की बात है कि इतिहास में आज का दिन है, शख्सियतों के नाम जिन्हें हम फख्र से याद करेंगे।
यस,
सबसे पहले समाचारों पर नजर डालते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि जब तक सीमा पर तनाव बना हुआ है पाकिस्तान के साथ व्यापार की कोई संभावना नहीं है। श्री जयशंकर कल सूरत में सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा भारत का आर्थिक उत्थान विषय पर आयोजित एक कॉरपोरेट सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
In Rajasthan, Prime Minister Narendra Modi will also address an election rally in Kotputli under Jaipur Rural Lok Sabha constituency. He will address the public meeting in Kotputli in support of the party's candidate from Jaipur Rural Lok Sabha seat, Rao Rajendra Singh. This will be the Prime Minister's first meeting for the Lok Sabha polls in Rajasthan since the announcement of the elections. Lok Sabha elections in Rajasthan will be held in two phases, that is on April 19 and April 26.
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में आज पहली चुनावी रैली को नैनीताल के ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रपुर में संबोधित करेंगे। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से है। उत्तराखंड में सभी पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।
Union Home Minister and BJP senior leader Amit Shah is paying a day's visit to Karnataka today. He will be addressing Shakti Kendra party workers in Bengaluru in the morning and later hold a road show in Channapatna, which is part of Bangalore Rural Lok Sabha constituency. BJP State General Secretary and Election Management Committee convener V. Sunil Kumar informed that Mr. Shah will be addressing party workers from five Lok Sabha constituencies. The core committee members meeting of five constituencies will also be held today. President A.G. Kumaraswamy will also hold a meeting with Mr. Shah and brief him about the political situation and work out a coordinated election campaign between BJP and JDS.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन 1 अरब टन को पार करना भारत की बड़ी उपलब्धि है। ये कोयला क्षेत्र का तेज विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऊर्जा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में ये भारत के आत्मनिर्भर कदम को भी सुनिश्चित करता है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोयला खनन क्षेत्र में व्यापक बदलाव हो रहा है।
Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachur, has emphasized the pivotal role of technology in transforming the criminal justice system. Delivering the 20th D.P. Kohli Memorial Lecture in New Delhi on the occasion of CBI Day yesterday, Justice Chandrachur advocated to adopt new technology to tackle new age criminal networks effectively. He said the need of the hour is to recognize the complexity of CBI proceedings and to leverage technology to avoid delays. The Chief Justice said the role of technology will facilitate speedy and fair trial. Justice Chandrachur said in the era of digital transformation, law and technology holds immense potential to shape the course of crime detection. On the occasion, the CJI also presented the President's Police Medals for Distinguished Service and Police Medals for Meritorious Service to CBI officers. The CBI was established by the Government of India Resolution dated 1st of April 1963 to investigate not only cases of bribery and corruption, but also violations of central fiscal laws and serious crimes, besides collecting supporting intelligence.
जापान में बीती रात लगभग एक बजे उत्तरी तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप मापा गया. इस भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के उत्तरी तटीय हिस्से में स्थित था.
And news from IPL, well, Rajasthan Royals defeated Mumbai Indians by 6 wickets at the Wankhede Stadium in Mumbai. Rajasthan successfully chased down the target of 126, reaching 127 for 4 in just 15.3 overs. Earlier put into bat first, Mumbai managed to score a paltry 125 runs for the loss of 9 wickets in stipulated 20 overs. Today, Royal Challengers Bengaluru will face Lucknow Super Giants at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru at 7:30 p.m. Indian time.
और अब आज सवेरे में हम रुख करेंगे कुछ महानगरों की ओर. सारा,
शुरुआत करते हैं कैपिटल से.
ठीक है. रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे आज से बिहार के समस्तीपुर से आनंद विहार के बीच एक विशेष अनारक्षित रेलगाड़ी चलाएगा. ये रेलगाड़ी समस्तीपुर से शाम 7:45 पर चलेगी और दरभंगा, रक्सौल, गोरखपुर, मुरादाबाद होते हुए शाम को 5:30 आनंद विहार पहुंचेगी. उत्तर रेलवे के अनुसार बिहार के रक्सौल से आनंद विहार के बीच ये विशेष रेलगाड़ी बुधवार को चलाई जाएगी और ये रेलगाड़ी रक्सौल जंक्शन से 10:25 पर चलेगी और अगले दिन शाम को दिल्ली के आनंद विहार 6 पहुंच जाएगी.
Let's head over to Chennai. The Chennai Consumer Disputes Redressal Commission has imposed a 25,000 rupees penalty on Apple. A customer of Apple MacBook had sued the company after service denial of the cracks in the system. In December 2020, the customer had purchased the equipment via Amazon for 66,000 rupees. By July 2021, he observed a crack on the display's inner surface while the external screen remained intact. The customer approached the authorized service center in Annanagar, which quoted 37,000 rupees for screen replacement, despite the laptop being under warranty until December 2021. Apple India supported the claim and argued that such damages warranted a fee for repair, even within the warranty period, and denied any manufacturing defects. So, very good news for listeners. Agar unke saath kabhi aisa ho, they should know that they can get a free service of that. Moving on to another news from Chennai, the Greater Chennai Corporation is set to create a new integrated portal, an app for grievances redressal, and enhance engagement between residents and officials. Citizen engagement platform, which is under development and will be available to the public to register civic complaints regarding street lights, roads, storm water drains, and issues such as tree removal and handling stray dogs.
वापस दिल्ली की ओर रुख करते हैं. दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में कल एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया. दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि इस महिला के पास से लगभग 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. उन्होंने कहा कि इस महिला तस्कर को अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. और दिल्ली विधानसभा में कल एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया. इस दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों ने कथित आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताया. सदन में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज गोविंद ने कहा कि श्री केजरीवाल को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. इस बीच सदन में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. श्री गुप्ता ने सदन में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर चर्चा को बेबुनियाद बताया और कहा कि जब मामला न्यायालय में लंबित है तो ऐसे में सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए. और दिल्ली से मुंबई का रुख करें.
बिल्कुल.
तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रेटर मुंबई नगर निगम हाउसिंग सोसाइटी औद्योगिक संपदा, बाजार, सिनेमा हॉल, शैक्षणिक संस्थान और शॉपिंग मॉल सहित कई जगहों पर जागरूकता अभियान चलाएगी. इस संबंध में कल मुंबई के नागरिक मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया. मुंबई में 20 मई को 5वें चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. मुंबई के अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी जोशी ने अधिकारियों को एक विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जा सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां 2019 के चुनावों में प्रतिशत 60 से नीचे था। समाचार पत्रों, पोस्टरों और सोशल मीडिया में विज्ञापन चलाने के अलावा नागरिक निकाय ने बसों और रेलवे स्टेशनों पर भी विशेष संदेश चलाने की एक योजना बनाई है। कचरा संग्रहण वाहन पर भी एक संदेश बजाया जाएगा, जिसमें मतदाताओं से वोट डालने का, अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने का आग्रह किया जाएगा।
If you talk about Bengaluru, well, several nominations were filed yesterday for the first of the two-phase Lok Sabha elections in Karnataka on 26th of April. On a single day yesterday, 55 nominations were received from 49 candidates. Since March 28 to date, 114 nominations have been received from 96 candidates from 14 constituencies going to polls on 26th of April. Among those who filed their nomination papers from BJP yesterday were P.C. Mohan from Bangalore Central, V. Somanna from Tumkuru and K. Sudhakar from Chikballapur. From Congress Party, Soumya Reddy from Bengaluru South, Raksha Ramaya from Chikballapur, Venkat Ramani Gowda from Mandya and Shreyas M. Patil from Hassan filed their nominations. April 4 is the last day for filing nominations in this phase. Scrutiny of nominations will take place on April 5. And April 8 is the last day for withdrawal of candidatures.
मुंबई में नागरिक निकाय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर के रूप में 3,196 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार एच ईस्ट वार्ड में करीब 336 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ ही वार्ड आधार पर संग्रह सबसे अधिक रहा, जबकि संभागीय आधार पर पश्चिमी उपनगर में 1,590 करोड़ रुपए के संग्रह के साथ आगे रहा है और पिछले वित्त वर्ष में संग्रह केवल 2.53 लाख संपत्तियों से है जिन्होंने नियत तारीख से पहले अपने कर का भुगतान कर दिया है।
एंड इफ यू मूव ऑन टू हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर रोनल्ड रोज इन्फॉर्म्ड दैट 3.28 करोड़ रुपीज इन कैश वाज सीज्ड टिल यस्टरडे, दैट इज 1st अप्रैल 2024 इन द डिस्ट्रिक्ट एज पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इलेक्शन कोड इन द वेक ऑफ द लोकसभा पोल्स। In addition, he said that other items valued at 13.8 lakh rupees and 18,752.83 litres of liquor were also seized. He said that 122 cases were filed. Moreover, 2,144 permitted firearms have been deposited ahead of the polls. District Election Officer Ronald Rose reported that in the last 24 hours, various enforcement teams seized a total of 9,54,200 rupees during the inspection. 11 complaints about the seizure of cash and other goods were received. 5 of them were immediately addressed, he said.
और अब रुख कोलकाता का करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में तूफान से हुए भारी नुकसान के बाद वहां के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री अमित शाह ने कहा कि वे तूफान के कारण हुए गंभीर नुकसान से बेहद चिंतित हैं। आज सवेरे में अब बात करते हैं मौसम की। मौसम में कुछ बदलाव के साथ कभी सुहावना मौसम और कभी गर्मी यहां दिल्ली में तो महसूस हो रही है, लेकिन सारा शाम और सुबह अभी सुहावनी बनी हुई है।
यस, थैंकफुली।
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में दिन के समय आज तेज हवाएं चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। मुंबई में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और कोलकाता में वैसे आज मौसम आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है, लेकिन दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
And if we talk about Chennai, Bengaluru and Hyderabad, well, Chennai is expected to have a partly cloudy sky today. The temperature will hover between 27 and 36 degrees Celsius, while Bengaluru will have a mainly clear sky today. Temperatures in Bengaluru will hover between 22 and 35 degrees Celsius, while Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. Temperatures in Hyderabad will hover between 24 and 39 degrees Celsius. And now we have come to that special segment of our show, जिसमें देखेंगे क्या कुछ खास हुआ था।
बिल्कुल, यहाँ हम अपने सुनने वालों से कहेंगे कि थोड़ी देर रुकें और चलें हमारे साथ अतीत में, जहाँ हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और आज के दिन को तलाश कर निकालेंगे।
Yes, so now we go back to 1942. The Andaman Islands U.S. Army Air Force Flying Fortresses bombed the Japanese fleet.
और 2 अप्रैल का दिन हम जिक्र जरूर करेंगे आज उस दिन और उस वक्त की। शायद हम में से बहुतों को याद भी है कि जब भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के माध्यम से कदम रखा था और ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया था जहां तब तक हम बिल्कुल नहीं पहुंच पाए थे। 2 अप्रैल 1984 का दिन था, याद आ गया होगा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अपने 3 सोवियत साथियों के साथ मिशन सोयूज T-11 के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। करीब करीब सभी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से पूरी हुई थी और भारतीय समय के हिसाब से ये 3 अप्रैल का मिशन था, लेकिन 2 अप्रैल का दिन नियत किया गया था। और उस समय ये घटना एक ऐसी घटना की तरह सामने आई जिसने युवाओं के मन में अंतरिक्ष को लेकर जिज्ञासा के साथ साथ अपार संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए थे।
Yes, indeed, a very historical day, especially in the history of our country. And I would urge all the listeners to listen to that clip, which is available on YouTube also, jo unki conversation hai with the then Prime Minister Indira Gandhi.
जी.
That wo puchti hai wahan se kaisa lag raha hai India.
Bada khoobsurat prashn, mujhe lagta hai isse khoobsurat prashn hamare uska jo uttar hai wo bahut dhoonde se hi milega.
Bilkul, bilkul. Sare jahan se acha Hindustan hamara. Well, moving on to another year, 1948, on this day, the then Defence Minister announced the establishment of the National War Academy in Pune.
1999 में मॉस्को में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल, जिसे CIS कहते हैं, उसकी शिखर बैठक संपन्न हुई। स्वतंत्र राष्ट्र राष्ट्रमंडल को रूसी राष्ट्रमंडल भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अस्तित्व में आए हुए राष्ट्र थे वो शामिल थे। स्वतंत्र राज्यों के इस राष्ट्रमंडल कुल में राष्ट्रकुल में 12 सदस्य देश हैं, जिनमें 3 संस्थापक सदस्य रूस, बेलारूस और यूक्रेन थे, जबकि 9 अन्य सदस्य देश आर्मेनिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्दोवा और किर्गिस्तान थे।
On this day, 1954, Pandit Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister, called for a halt to the build up of nuclear weapons. Also on this day in 1970, Meghalaya, an autonomous hilly state, was established after dividing the hilly areas of Assam.
2007 में एक शक्तिशाली सुनामी आई थी, 8.1 तीव्रता के भूकंप के बाद सोलोमन आइलैंड्स में। सोलोमन द्वीप प्रभु संप्रभुता संपन्न देश है और इसमें 6 प्रमुख द्वीप हैं और कई छोटे छोटे द्वीप हैं। और 2011 में जब हम आज के दिन का स्मरण करते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर ICC विश्व कप 2011 की ट्रॉफी अपने नाम की थी। ये भारत, श्रीलंका और पहली बार बांग्लादेश के बीच खेला गया था। भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था और फिर टूर्नामेंट जीत लिया था और घरेलू धरती पर, अपने ही देश की धरती पर क्रिकेट विश्व कप फाइनल जीतने वाला भारत पहला देश बन गया था।
एंड इन 1970 ऑन दिस डे प्रिवी पर्सेस एंड स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर इंडियन रूलर्स वर अबॉलिश्ड। Also on this day in 1987, the Indian Standards Institution became the Bureau of Indian Standards. Also on this day in 1997, a division bench of Mumbai High Court held that a married woman of a joint Hindu family can stake claim to her father's property.
जी, और अब ये तो कुछ घटनाएं हमने आपके साथ साझा की। अब हम चलते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों के बारे में चर्चा करने के लिए जिनका आज के दिन के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे महान गायक की जो अपने ऊंचे कदकाठी और व्यक्तित्व के साथ ही अपनी कला में भी उस स्थान पर पहुंचे जहां कलाकार एक तरह से सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देता है। हम श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का। शास्त्रीय संगीत के इस बेशकीमती रत्न का जन्म 2 अप्रैल 1902 को हुआ और उन्होंने इस संसार को 25 अप्रैल 1968 को अलविदा कहा। बड़े गुलाम अली खान साहब की गणना देश के महानतम गायकों और संगीतज्ञों में की जाती है। उनका स्वर विलक्षण था और उनके गायन को सुनकर श्रोता कहते हैं कि अपनी सुध-बुध मानो खो दिया करते थे। उस वक्त आज की तरह रिकॉर्डेड संगीत चलाने का चलन तो था नहीं, तो देश के कोने कोने से उनको पारखी लोग गाने के लिए न्योता भेजते थे। लेकिन वो गाने में कहते ना कलाकार कुछ मूडी होते हैं सर,
राइट राइट,
तो वो कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे इसका कोई वो
उनको
नहीं,
उनको भी शायद खबर नहीं होती। हाँ। वो कहाँ उनकी कला खुद ही ले
लेकिन
जाती है।
जहाँ उनको पसंद आता था कुछ इस तरह का उनका था कि जहाँ उनका मन करता था वहां वो काफी देर तक गाया करते थे, और जहां नहीं होगा तो वहां वो मना कर देते थे साहब। दिल को छू जाने वाली आवाज के मालिक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने ठुमरी को भी एक नया अंदाज दिया और जानकारों के मुताबिक उस्ताद ने अपने जो प्रयोग धर्मी संगीत था उसकी बदौलत ठुमरी को जानी पहचानी जो उसकी शैली और जो उसकी एक परिधि थी उसे बाहर निकाला।
दुख सा न जाए अरे याद किया आए याद किया
At the age of 5, Bade Ghulam began training in vocal music from his uncle Kale Khan and later from his father. And though he started his career by singing a few compositions of his late father Ali Bakhsh Khan and uncle Kale Khan, Bade Ghulam Ali Khan Sahab amalgamated the best of three traditions into his own Patiala Kasoor style.
Mm-hmm.
The Behram Khani elements of Dhrupad, the gyrations of Jaipur and the Behlavas or the embellishments of Gwalior.
हाँ, इनके पिता महाराजा कश्मीर के दरबारी गायक थे तो वो घराना कश्मीरी घराना कहलाता है और जब ये लोग पटियाला जाकर रहने लगे तो पटियाला घराना के नाम से ये घराना जाने लगा। और बड़े गुलाम अली खान साहब ने सबरंग नाम से कई बंदिशों की रचना की है और विशेष रूप से मैंने राग भैरव जो सुना है वो इतना खूबसूरत बंदिश है, वो गुलाम अली खान साहब की अपनी ही बंदिश है। और कहा जाता है कि 1947 में खान साहब पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वहां उनका मन नहीं लगा और वापस उन्होंने लौट करके बहुत जल्दी वो लौट आए भारत में और सरकार ने संगीत के इस अनमोल सितारे के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया और सधे कंठ के कारण उन्होंने कई जगहों पर गाया लेकिन फिल्म में गाने को बहुत पसंद नहीं किया लेकिन
right.
हमारे पास एक क्लिप है जो उन्होंने मुगले आजम में गाई है वो हम आपको सुनवाते हैं।
For a long time he stayed away from singing in films despite requests and persuasion from very well-known producers of the time. But finally, after much coaxing, he was convinced by K. Asif to sing two songs based on Sohni Raag and Rageshwari Raag. फॉर द आइकॉनिक फिल्म मुगले आजम जिसका आपने अभी क्लिप सुना।
जी, और ऐसे कलाकार के लिए सम्मान कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है।
और ये भी एक ट्रिविया बता दें रिलेटेड टू दिस सॉन्ग दैट ही डिमांडेड एंड रिसीव्ड एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। अगर अंदाजा लगा उस वक्त उनको एक गाने के 25,000 मिले थे विच वॉज एन एग्जॉर्बिटेंट सम। एंड वेन द रेस ऑफ पॉपुलर एंड यू नो प्लेबैक सिंगर्स सच एज लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी दे वर चार्जिंग बिलो 500 रुपीज पर सॉन्ग। इमेजिन 25,000 फॉर वन सॉन्ग।
और बड़े गुलाम अली खान साहब को संगीत नाटक अकादमी सम्मान और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
मूविंग ऑन नेक्स्ट वी आर रिमेम्बरिंग फ्रीडम फाइटर अ रेवोल्यूशनरी वीवीएस आयर एंड ऑफकोर्स ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु हू फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश कलोनियल रूल इन इंडिया। His contemporaries include Subramanya Bharti and Chidambaram Pillai, who subscribed to militant forms of resistance against the British colonial government. He also exchanged ideas with V.D. Savarkar during his stay at India House in London. He went into exile in Puducherry or Pondicherry, that was known then, then under French rule. And when his militant activities attracted a warrant for his arrest from the British.
Varahaneri Venkatesh Subramanya Iyer एक क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त थे और साथ ही साथ उन्हें कई भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था जिसमें अंग्रेजी फ्रेंच संस्कृत तमिल और कई भाषाओं के जानकार थे। बहुभाषाविद भी उनको कहते हैं।
यस, इनफैक्ट ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल शॉर्ट स्टोरी। ही वॉज अ वेरी गुड राइटर एज वेल। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड मेनी आइकॉनिक वर्स इन टू इंग्लिश फ्रॉम तमिल।
और अब हम याद करेंगे रसायन शास्त्री और आविष्कारक अला वेंकट रामा राव को जिनका जन्म 2 अप्रैल 1935 में हुआ था और दवाओं के क्षेत्र में अपने अग्रणी शोध के लिए वे जाने जाते हैं। भारतीय विज्ञान अकादमी बंगलुरु ने 1985 में एवी रामा राव को अपना फेलो चुना था।
Today we are also remembering Dulal Guha on his birth anniversary. A director of Hindi cinema, predominantly Hindi movies in the 1960s and 70s, he was born in Barisal city. His father, Rohini Guha, died when he was just 1 month old, after which he was cared for by his uncle Harendra Lal Guha. And if we talk about his career in the film industry, well, he directed many films with Dharmendra as the main lead, and he was instrumental in giving Dharmendra his garam dharam image jo thi, Dharmendra ki, wo unhi ki films se mili thi, and especially from the blockbuster film Pratigya, which came out in 1975. And if we talk about many of his prominent films, it's Ek Gaon Ki Kahani, Chand Aur Suraj, Izzat, Jyoti, Dharti Kahe Pukar Ke, Mere Hamsafar, Dushman, Do Anjane, Dil Ka Heera Dhua, Do Dishayen, Mera Karam, Mera Dharam, and Sagar Sangam, to name a few. And we have a song from the film Do Anjane. Let's listen to it.
चलने से पहले हम याद करेंगे बालाजी विश्वनाथ को जिनकी सेवाओं से मराठा साम्राज्य अपने गौरवपूर्ण अतीत को एक बार फिर से हासिल करने में काफी सफल रहा क्योंकि उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के परिवार के लिए वंशगत कर दिया गया था। इसलिए बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा का पद दिया गया जो कि एक साहसी और निर्भीक राजनीतिज्ञ थे, ये हम सभी जानते हैं। और साथ ही चलने से पहले हम याद करेंगे समाजशास्त्री और सामाजिक उद्यमी बिंदेश्वरी पाठक को जिनका जन्म आज के दिन 1943 में हुआ। वर्ष 2024 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत और अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। और इसके साथ ही अब चलने का समय हो गया है, श्रोताओं से अनुमति ली जाए। सायरा, शुभकामनाओं के साथ हम अनुमति लेते हैं आपसे, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड, नमस्कार।